ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जुलाई सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुए। राम
नारायण 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 बातें सुने और बातों का अनुभव करें। सुनना और सीखना और अनुभव करना ये 3 बातें हैं। सुनना तो मैं जानते ही है, सीखना क्या है कि वैसे हम भी कह सके, दूसरा कोई पूछे तो बता सके, हम कह सके, विवेचन कर सके, ये सीखना हो गया। और अनुभव करना है कि वैसे का वैसे ही बिल्कुल अनुभव में आ जाए, जानने में आ जाए। केवल सीखना जानना नहीं है, जानना सीखने को भी जानना कहते हैं और अनुभव को भी जानना कहते हैं, वो असली जानना। जैसे अपने कहा भी संसार परिवर्तनशील है, स्वभाव इसका बदलने का है, तो ये बात सुन ली और सीख ली, इससे भी लाभ होता है, परंतु असली लाभ ये नाशवान होता दिखे यूं, जैसे गंगा जी का प्रवाह नेत्रों से बहता दिखता है, ऐसे अपने भीतर प्रकाश से ज्ञान में ये संसार सब बहता हुआ दिखे। स्वर्ग है, वर्ष है, पाताल है, लोग 14 भुवन, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र पृथ्वी ये समुद्र सब रहे हो। हर समय बह रहे हैं, जैसे नदी गंगा जी चल करके समुद्र में एक हो रही है, ऐसे सब मिलकर के एक परमात्म एक हो रहे हैं। एक होने में फर्क रहता है, ऐसे प्रकृति आप से आप होता है, ये प्रलय होता है। अभी सृष्टि देखती ये न देख करके प्रलय हो जाएगा। तेज बढ़ता है सूर्य जिससे जल जाता है सब सृष्टि, फिर पानी होता है जो पानी हो जाता है सब जल जाए, उसके सिवा कुछ नहीं रहता, ऐसे उसमें हो जाता है। इसमें बाद फिर वो तत्व आदि बन करके एक आकाश रह जाता है, आकाश फिर भगवान के मन में लीन हो जाता है, परमात्मा का मन रह जाता है, बस उसमें मन नहीं है, परमात्मा को बोल जाता है, तो वो प्रकृति में लीन होता है, होना कहते हैं इसको, प्रकृति में लीन हो गया। तो आप से आप जो होता है ये प्रकृति में प्रलय होता है, सब एकता करे ना, तो एकता करने से सिर्फ मिलाकर करे तो सब मिट्टी हो जाता है, मिट्टी है सभी देखने वाली मिट्टी हो जाता है, राग होकर मिट्टी हो जाएगी। तो ये तो एक संसारी एकता है, और परमात्म तत्व की एकता है। वे जितने साधक है वे जा रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, वे बचल रहे हैं। किसी की चाल तेज है, किसी की मंदी है, किसी की थोड़ी है, किसी की ज्यादा है, किसी की अवस्था ज्यादा हो गई, किसी की कम हो गई, परंतु वे परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए ये कहा कि नहीं कल्याण कृष्णग्रस्त दुर्ग चिंता गर्षती। अर्जुन का संदेह हुआ कि महाराज उभय भ्रष्ट हो जाएगा, संसार की तरफ से तो चल दिया, इसको तो विमुखता कर दी, इसको पीठ दे दी, इसको तो त्याज्य समझ लिया, और परमात्म तत्व है उसकी प्राप्ति हुई नहीं, उसका चिंतन उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, तो जैसे एक बदल से बदल का टुकड़ा छूट और दूसरे बदल की तरफ गया और वो पहुंचा नहीं छन्ना ब्रह्म निश्चय बीच में छिन्न भिन्न हो गया, कुछ नहीं आकाश ही हो गया। ऐसे ही वो संसार जो छोड़कर परमात्मा में जाता है तो उधर जाते जाते बीच में ही रह जाता है, तो बीच में छिन्न भिन्न हो जाता है, तो अभाव जैसा नष्ट हो जाता है क्या। अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ हो ब्रह्मण प्रति, यहाँ तो अप्रतिष्ठित है और ब्रह्मण पति विमूढ़ है, परमात्मा की प्राप्ति में मूढ़ रह गया, तो ऐसे चलता चलता हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। कहां गति कृष्ण गति, वो किस गति को जाता है, ऐसे नष्ट हो जाता है क्या, और किस गति को जाता, वो बात आई। तो ये नष्ट हो जाता है ना, उसका अभाव ही हो जाता है। इसका पहले उत्तर दिया कि उसका नाश नहीं होता, नहीं कल्याण कृतग्रस्त दुर्गति तात्ग्रस्त पार्थ नहीं भी है नाम उत्तर बिना शस्त्र से विद्यते, यहाँ और परलोक मानो जीते भी वो नष्ट होते नहीं, वह पतन नहीं होता है और मरने के बाद भी अभाव हो जाए ऐसे नष्ट नहीं होता, नहीं भी है यह और अमूत्र परलोक में विनाशस्त सीमित उसका अभाव नहीं होता है, क्योंकि नहीं कल्याण कृष्ण कृष्ण दूर चिंता प्यारे कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती, वो सदगति होती है। उस सदगति में अलग अलग विभाग है, कोई थोड़ी है कोई ज्यादा कोई ज्यादा, इस तरह से तारतम्य है, परंतु दुर्गति नहीं हो, कल्याणकारी काम करता है ना, सांसारिक लोगों में सांसारिक भोगों में सांसारिक संग्रह में संकार सांसारिक मान सत्ताकार बढ़ाई में ही उलझा हुआ रहता है, इनमें फंसा रहता है, वो जो संसार में होता है उसको पसंद हो जाता है। विनाश का अर्थ अभाव नहीं है, विनाश का अर्थ जो अपनी स्थिति है उनसे गिर जाना है, पतन हो जाना है, उसको अर्जुन ने विनाश कहा, मान गिर जाते पतन हो जाता है, तो वो गिरता नहीं। और संसारी की जो उन्नति है ये सामने रहती है, भोग ऐश्वर्य संग्रह मान बढ़ाई पद अधिकार इनमें लोग रहती है, वो पतन ही पतन है उसका, बार बार जन्म मरण होता है, वो कहाँ तक है तो उसके बाद भगवान ने हद बता दी, आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोग तक जाते हैं वो भी फिर पीछे लौट कर आ जाते हैं, फिर जन्म मरने पड़ जाते हैं। नाव पेटी तो कौन थे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो पतन नहीं होता, नहीं तो लोगों में ब्रह्म लोग तक ये सब सृष्टि में पतन हो जाता है। तो साधन करते हुए वहां तक जाते तो गिर जाते हैं, तो यहाँ साधन करते चलते जाते हैं तो उसमें पुनः आने की वृत्ति को ऐसे जाते हैं, वो योग भ्रष्ट कह जाते हैं। योग परमात्मा के साथ संबंध, तो परमात्मा का नाम लेता है कीर्तन करता है, यहाँ से बहुत थोड़ा परमात्मा का संबंध है, वो भी एक योग ही है, परंतु जब तक सकाम भाव रहता है, नाशवान की कामना रहती है, परिवर्तनशील पदार्थों को महत्व देता है, तब तक उसका पतन हो जाता है, तो योग भ्रष्ट हो जाता है। वो योग भ्रष्ट होते हैं उसकी दो गति बताई है, क्योंकि दो तरह के साधक होते हैं, एक तो साधक है जिसको स्वतः संसार से पैदा क्यों गया, भोग संग्रह मान बढ़ाई ये अच्छी नहीं लगती, इनसे उकसाता है, ये बुरी लगती है और परमात्मा में लगा है, तो ऐसा है उसका भी अंतकाल में मन इधर उधर हो जाए तो वो योग योगाश्रित मान से मन हो जाए, तो ये सब होता है कर्म सापेक्ष में, मन आगे साथ रहता है बुद्धि को साथ रखता है, तो कर्म सापेक्ष में ये बात होती है, पहले से कर्म निरपेक्ष करता है कि ये मन भी प्रकृति है बुद्धि भी प्रकृति है अहम भी प्रकृति है, मैं प्रकृति का ज्ञाता हूँ, अहं को जानने वाला हूँ, अहं मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ऐसे विवेक मार्ग में चलता वो योग भ्रष्ट नहीं होता। भक्ति में चलता योग भ्रष्ट नहीं होता, योग मार्ग जो कर्म मार्ग में चलता वो योग भ्रष्ट नहीं होता, ज्ञान का विवेक मार्ग में चलता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता, मन मन बुद्धि को लेकर चलता है, कर्म सापेक्ष चलता है, तो वो जड़ के साथ में संबंध उनका रहता है अहम और बुद्धि के साथ, तो वो अंत में अगर स्मरण हो जाए भगवान का, तो स्मरण होने पर वो परमात्मा की तरफ जाता है, तो उनके साथ ऐसे मन बुद्धि लीन हो जाते हैं, वो परमात्मा तप्त हो जाता है, अंतकाल है, अंतकाल में भी स्मृति करता है तो परम गति हो जाता है। कर्ण सापेक्ष होता है तो वो साथ में जड़ता रहने से योग भ्रष्ट होता है। ये दो से एक तो वैराग्य हो गया है और चलता है, तो वैराग्य सर्वथा सर्वथा नहीं होता है, सर्वथा तो वैराग्य होता है, रसवर्धन रसो वैसे परम दृष्टा निवर्त परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर होता है, पहले वो सब होता नहीं, तो उसको पहले योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। पहले से ही इन चीजों का अभाव करके विवेक को प्रधान देता है, जड़ चेतन के विवेक को, नित्य नित्य सत असत के विवेक को आदर देकर चलता है, तो वो जड़ता मात्र से विमुख हो जाता है, तो वो योग भ्रष्ट नहीं होता। तो योग भ्रष्ट होते तो एक तो वैराग्य होकर लगा, एक सत्संग में सुन करके और विचार के हमें भी भजन स्मरण करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, दूसरी दृष्टि से हमें जीवन मुक्त होना है, ऐसे बंधन से रहित होना है, मुमुक्षा मोक्ष करना है, अपने जिज्ञासु होता है घर में तत्व को जानना है, ऐसा होता है, ऐसे चलते रहते हैं, उनके पूरा वैराग्य होना ही सत्संग महिमा सुन करके उसमें लगे रहते हैं, तो सत्संग की महिमा सुन करके लगे रहते हैं, उनके तेजी का वैराग्य नहीं होता, तो वो यहाँ से स्वर्ग आदि उनसे भोग जिसमें सुंदर भोग ऐसे लोगों में जाते हैं, क्योंकि संसारिक भोगों का त्याग किया है, वो दोनों नहीं किया है, वो त्याग करते हुए राग रहता है तो स्वर्ग में जाता है, और वहाँ बहुत वर्षों तक स्वर्ग के सुख भोग करके स्वर्ग सड़े ऊंचे लोगों को सबका नाम स्वर्ग है, भूलोक भोर लोग मर लोग जन लोग तप लोग सतलोक सब ब्रह्म लोग तक, तो वहां लौट करके पीछे आ गए है वो पीछे आ करके, और श्रीमन अगर जन्म लेता है भोगों के संस्कार रहे ना तो मनुष्य जन्म लेता है, वो श्रीमान है शुद्ध श्रीमान हो, जिनकी लक्ष्मी शुद्ध होती है, आचरण शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, ऐसे हमें जन्म लेता है, ऐसे जन्म लेकर भोग की बोलता होती है, उनसे भी उसका मन रुकता नहीं है, उनमें रुचता नहीं है, भोग भोगता है, फिर भी ऐसे ऊंचा होना चाहता है, तो भोगों से ऊंचा उठता है, ऊंचा उठते हुए वैराग्य तरफ चला जाता है, इसलिए से वहां करके प्रयत्न तो योग जो प्रयत्न से यत्न करता है, जो यत्न करते हुए संशुद्ध के विषय सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वैराग हो जाता है, फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है, और जिसके भीतर से वैराग्य रस चलता है, वो किसी कारण से रोग आदि कारण है, थोड़ी बहुत कहीं आ सकती रहती वो कारण है, अंत समय वृत्ति उधर नहीं रही, किसी और तरफ वृत्ति चली गई, तो ऐसे योग भ्रष्ट होता है, वो योगियों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ सत्संग भजन निरंतर होता है, ऐसे तत्वों के जीवन मुक्त महापुरुषों के वहां जन्म लेता है, तो वो जन्म लेता तो वहां उनकी सामग्री मिल जाती है, बाधक सामग्री तो वहां होती नहीं, दिव्य पदार्थ श्रीमानों घर में जैसे बाधक सामग्री होती है, ऐसे बाधक सामग्री होती नहीं, केवल बाधक नहीं होती इतनी बात नहीं है, उनकी साधक सामग्री होती है, भजन स्मरण जप कीर्तन तत्व की बातें सत्संग ऐसा होता रहता है, ऐसा होता है वहां पर मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तो इस धर्म को दुर्लभ रहा एतद्धि दुर्लभ तरम जो के जन्म यदि ऋषम, ऐसे जन्म है वो दुर्लभ तर है, बहुत दुर्लभ है जन्म, फिर उसके पर जन्म माना नहीं होता, ऐसे वो मुक्त हो जाता है। तो ये परमात्मा की तरफ दृष्टि हो गई, थोड़ा राग भी रह जाएगा तो भी पतन नहीं होगा, बार बार जन्म मरण नहीं होगा, एक दो जन्म तीन जन्म हो जाएंगे, स्वर्ग आदि किसी के भोग भोग गए, यहाँ पर आए, यहाँ रह गए, फिर यहाँ भी भोग भोग से करते हैं, उसमें रहने से इन्हें चलित मना हो जाता है वो। और मन आदि को पहले से ही सत असत का विवेक करके और सत की तरफ चलता है तो जड़ता तो स्वतः ही दूर हो जाती है, क्योंकि ये तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, तो ये तो नष्ट होता ही है सृष्टि, तो ये जड़ता से ऊंचा उठ जाता है वो, तो वो फिर अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो विवेक जो है सत असत दोनों का अलग अलग जानना, अलग जानने में सत का तो नाश नहीं होता, ना भाव विद्यते सत, और असत है ना सतो विद्यते भाव, उसका भाव नहीं असत्ता का, तो भाव नहीं होने से विवेक की प्रधानता से सत के ऊपर स्थित होता है, असत का छोया भाव होता है, इस विमुख हो जाता है, तो अंतकाल भगवान की स्मृति तत्व की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसका जन्म नहीं होता, वो योग वर्ष नहीं होता, क्योंकि उस प्रधान विवेक की प्रधानता रही, अपने अभ्यास की इसकी प्रधानता नहीं है, विवेक की प्रधानता है, सत क्या है असत क्या है इसमें गहरा उतर करके समझता है, तो योग वर्ष प्राण प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी बात है, तो वो बात मैंने कही कि भाई ये बात तो सीधी अपने सब लोग जान सकते हैं कि संसार बदलता रहता है, हमारा शरीर बचपन कैसा था आज कैसा है, अरे वो हरदम बदलता है, कोई समय पाकर बदलता हो एक दो बार ऐसा नहीं है, प्रत्येक क्षण ही बदल रहा है, प्रलय की तरफ नाश की तरफ मौत की तरफ ये जा रहा है, महाप्रलय जा रहा है, ये निरंतर तो ये जा रहा है। तो ये बात तो अपने समझ में आ जानी चाहिए, जो सत्संग करते हैं उनके समझ में ये तो आ जाएगा, ये नाश हो रहा है, ये अभाव हो रहा है, ये सब मौत में जा रहे हैं, निरंतर मौत में जा रहे हैं, क्यों मौत में जा रहे हैं, शरीर शरीर हूँ साथ अपनापन माना है, शरीर मैं हूँ अथवा तो शरीर मेरा है, तो शरीर के साथ संबंध रखा है, उस शरीर से ही काम लेता है, शरीर के अंतकरण से काम लेता है, प्राणों से काम लेता है, इनसे काम लेता रहता है, चलता है, तो जड़ता की साथ मुख्यता उसकी रहती है शरीर में, परंतु उद्देश्य उसका परमात्मा तत्व चिन्मय तत्व की प्राप्ति का होता है, इस वास्ते वो ऊंचा बढ़ता रहता है। तो ये तो कम से कम तेजी का वैराग्य हो तब भी, और वैराग्य कम और सुन करके लगे तो भी, परमात्मा की तरफ चलना है तो ये नाशवान है, संसार के साथ हम नहीं रह सकते, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हरदम रहेगा नहीं और मैं इनके साथ रहूंगा नहीं, ये तो सीधी सीधी बात है, बालकपना नहीं रहा, बालकों का साथ नहीं रहा, उसके विचार नहीं रहे, वो अपनी स्थिति नहीं रही, वैसी मान्यता नहीं रही, ये सब मिटने वाले हैं, ये सब मिट रहे हैं, तो इसका ज्ञान है, ये तो हरेक सत्संगी को हो ही जाना चाहिए, मेरे विचार से इसमें कठिनता क्या है, तो सीधी बात ऐसी अनुभव में आनी चाहिए, जैसे हम गीता परिसर में बैठे हैं तो अपने घर पर नहीं है, गीता परिसर बैठे हैं, इस तरह से हम तो उस विनाशशील में नहीं है, हम तो परमात्मा में चेतन में बैठे हैं, ये विनाशशील हरदम नष्ट हो रहा है, तो शरीर और संसार ये मौत में जा रहा है, हरदम नष्ट हो रहा है, तो ये बात तो बड़ी सुगम है, सरल है, हर एक के समझ में आई जानी चाहिए, और उसको पकड़ लेनी चाहिए, वो सुनना और सीखना नहीं, मनो देखनी चाहिए भीतर से, हाँ ऐसा जैसे गंगा जी नेत्रों से देखती है, ऐसे भीतर विवेक से विचार से ये बातें देखने लग जाए कि तो भी जा रहा है बिगड़ रहा है, ऐसा हो जाने पर उसे चिंता शोक नहीं होगा, भय नहीं होगा, जितना जितना विवेक जागृत होगा उतनी उतनी चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, ये कम हो जाएगी, मनुष्य सत की और असत की जो दृष्टि है उनमें सत दृष्टि उनकी मुख्य होती जाएगी, जड़ता का त्याग होता है, जड़ता से विमुखता होती जाएगी, जड़ता त्याग से सुधर होता है। स्वभाव के हमारे सारे शरीर वो नहीं रहता, अवस्था नहीं रहती, परिस्थिति नहीं रहती, घटना नहीं रहती, ये तो वियोग हो ही रहा है और विवेक हो जाने से उसे नहीं हो रहा है, इससे ऊंचा उठता ही जाएगा, जितना ऊंचा उठ जाएगा उतना ये संसार का दुख नष्ट हो जाएगा। और ये कर्म सापेक्ष होगा ना, उनमें ऐसी बातें हो गई तो उनमें कहा जाएगा ऊंचा ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, परंतु मुक्ति नहीं होगी। अब वर्तमान में वैराग्य आदि नहीं हुआ है तो दृष्ट दुख साधन करता रहता है, पर दृष्ट दुख जो धन नष्ट हो गया, बेटा मर गया, बीमारी आ गई, ऐसा आ गया, उससे दुख होता है, संताप, ये मिटेगा नहीं। और विवेक मार्ग में ये कम होता ही चला जाता है स्वतः स्वाभाविक, और वो कर्म सापेक्ष में ये जल्दी मिटता नहीं है, दुख होता रहता है, संताप होता है, फिर साधन करता है, सत्संग मिलता है कम हो जाता है, सत्संग नहीं मिलता है फिर ज्यादा हो जाता है, शोक आदि चीज वस्तु हो गई, खो गई, कोई घर का मर गया तो बड़ा साप संताप होता है, बड़ा ताप होता है, बड़ा शोक होता है, पिघल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो विवेक की प्रधानता रहती है तो व्याकुल कभी नहीं होती, उसमें समझता है कि नाश हुआ तो नाशवान का ही नाश हुआ है, अभिनय के तो नाश होता नहीं, ऐसे नाश होता ही रहते हरदम, मर गया तो क्या नई बात क्या हो गई, कि जब पेट में आया तब से मरना शुरू हुआ, जन्म जैसे मरना शुरू हुआ, बाल था तो भी मरना जारी था, वो मरना मरना मर गया, नई बात क्या हो गई, ये तो होती है निरंतर ही वियोग होता ही है, ऐसा होता है। वैसे वैसे जितना जितना विवेक आगारी बढ़ेगा इतनी इतनी चिंता शोक भय उद्वेग ये नष्ट होते ही चले जाएंगे एकदम। इसमें कोई पूछने की बात हो शंका उत्पन्न हो तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए ना, अपन सबके जो सुनते हैं भाई बहन ध्यान दे करके, तो इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि भाई इनका तो वियोग हो रहा है, ये तो होगा नई बात क्या होगी। जैसे गीता में कहा कि देह नो अस्मिन देह कौमारम यौवनम, जरा कुमार अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धा अवस्था हुई तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही सूर्य कांड से ही वो देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, धीरस्थ धर्मी होती है, वो धीर मोहित नहीं होता। अब बाल जवान हो जाए तो जवान को होने में शोक होता है, अरे बाल को कहीं हमारी वो मिलती नहीं, खो गई सर्वथा मिलती है नहीं, तो ये खो जाने से दुख होता। ऐसे जवान अवस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, तो वृद्धावस्था में असमर्थता अधिक तो होता है, पर मेरी जवानी चली गई, ये खो गई हमारी, ऐसी कोई चिंता नहीं, बदलता है तो बदलेगा ही भाई, ये क्या चिंता करें, ये तो बदलता ही है। ऐसे ही बूढ़ा होकर के मर जाए तो मर जाने पर भी दूसरा देहांतर हो जाएगा, बालक जवान और बूढ़ा हुआ, फिर बालक जवान बूढ़ा, फिर बालक जवान बूढ़ा, फिर बालक जवान बूढ़ा, ये तो चक्र चलते ही, नई बात क्या होगी इसमें। तो साधक के सामने ये बदलने में इसमें चिंता फिर जितना विवेक ठीक जागृत होगा सत्संग करेगा इतना ये स्थायी हो जाएगा, और ठीक विवेक साफ हो जाएगा तो विवेक में असत अंश नष्ट हो जाएगा और सत अंश में स्थिति हो जाएगी, ये बोध में परिणत हो जाएगा, जड़ता का त्याग होने से बोध रूप ज्ञान रूप परमात्म स्वरूप वो रह जाएगा, असत तो नष्ट होता ही है, ये सब था नष्ट हो, राग मान नष्ट हो गया तो उस परमात्म सत्व की प्राप्ति होगी। तो ये प्रवास को याद है समझ में, नारायण 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 नारायण। Allah